कष्टों को प्राप्त होता है, इसकी चर्चा चल रही थी। क्योंकि संसार में चार गतियों का भ्रमण है, और चार गतियों के भ्रमण में एक नरक गति है, जहां सबसे तीव्र दुख है। नरक जाने वाला जीव कृतघ्न भी हो सकता है। कृतघ्न मतलब जो अपने पर किए हुए उपकार को नहीं गिनता, ऐसा जीव भी नरकगामी हो सकता है। तो पांच प्रकार के दुख होते हैं। कुछ दुख असुर लोग इनको भिड़ा करके पैदा करते हैं, कुछ इनसे शारीरिक दुख सहज रूप से प्राप्त होते हैं, कुछ मानसिक अनेक प्रकार के दुख होते हैं उनको, मन से संबंध रखने वाले, और क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भी तीव्र दुख वहां नरक में पाए जाते हैं। कहीं वज्राग्नि के समान, जैसे बिजली गिरती है तो कितना गर्म होती होगी वो चिंगारियां उसकी, उतनी वज्राग्नि के समान तपती हुई कुछ पृथ्वियां हैं, और नीचे कुछ इतनी शीत पृथ्वियां हैं। ज्ञानाणु ग्रंथ में लिखा है कि सुमेरु पर्वत जितना विशाल लोहे का पिंड अगर नरक में छोड़ा जाए तो शुरू की पृथ्वियों में तो वो गल करके बिल्कुल पानी पानी जैसा पिघल जाएगा, और नीचे की पृथ्वियों में जैसे ही जाएगा तो वो इतना तेजी से जम जाएगा कि जम करके उसके खंड खंड बिखर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इतनी ठंड पड़ती है नीचे। अभी तो यहाँ साइबेरिया में -18 डिग्रीज -47 डिग्रीज तक के टेम्परेचर चला जाता है। और लगभग 8 महीने तक तो वहां हरियाली नजर नहीं आती, बर्फ ही बर्फ रहती। साइबेरिया से एक व्यक्ति आया था यहाँ जैन दर्शन पढ़ने के लिए, सेर्गी उसका नाम था, नवयुवक था, पढ़ने आया था। तो वो आकर के उसने चर्चा की थी हमसे, लाडनू में उसने कुछ चीज़ें सीखी थी, कुछ प्रोफेसर एलसी जैन के पास सीखा था, फिर हमसे भी मिला था। उसने बताया कि मैं शाकाहारी बन गया, बोले जैनिज्म पढ़ करके, मैंने जैन दर्शन के अध्ययन से मैंने वो सब अभक्ष खाना छोड़ दिया। फिर मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, बोले कि तुम खाओगे क्या, बोले वहाँ शाकाहार में कोई ऐसे खाने लायक चीज़ है क्या, तुम्हें मज़ा आएगा क्या खाने में शाकाहार। तब मैंने उनको मटर पका करके खिलाया तो उनको भी मज़ा आया, बोले कि अरे है तो सही कुछ। तो वो आया और फिर उसने हमसे एक प्रश्न पूछा। देखो दुनिया भर के लोग, जैनी लोग, स्वाध्याय करने वाले लोग भी कैसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उसने, उस विदेशी ने जिसका हिंदुस्तान से भी कोई संपर्क नहीं है, उसने आकर के हमसे प्रश्न पूछा जैन दर्शन का अध्ययन करने के बाद कि हाउ कैन वी नो दैट वी हैव एनिहिलेटेड आवर कर्मा, यानी कर्मों का क्षय हुआ या नहीं हुआ ये अपन कैसे पहचाने। कितना अद्भुत प्रश्न, विचार करो, आप कभी उठा है आपके मन में? क्षय होता है, निर्जरा होती, ये सारी बातें अपन ने सुनी है, लेकिन उसने वहां रूस से, मतलब हजारों किलोमीटर दूर, साइबेरिया मतलब नॉर्थ साइड में है रूस के, वहां से आकर उसने हमसे, जबलपुर की बात है, ये प्रश्न पूछा कि कर्मों की निर्जरा हुई इसका अपन को कैसे पता चले, उसको पहचानने का कोई ऐसा अनुभव है या कोई चिन्ह है या कोई एहसास है? तो फिर क्या जवाब है इसका बताओ? बस जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि तपस्या से कर्मों का क्षय होता है, इसके सिवाय और क्या पहचान है इसकी। एक बहुत बड़े तपस्वी साधु ने एक बार, कुछ नवयुवकों ने उनसे पूछा कि क्या आप इस युग में ऐसी तपस्या करते हो, गर्मियों के समय भी इतने कठोर उपवास कर करके शरीर को इतना सुखा डाला आपने, क्या है ये सब? तब पिछली परिवर्तन के दिन उनने उसका जवाब दिया, और उनने वो जवाब दिया कि जिसको हम लोगों ने क्या था कि एक जर्मनी के व्यक्ति ने उसको रिकॉर्ड कर लिया वीडियो कैमरा से, और फिर वो ऐसे भ्रमण करते करते एक बार क्षेत्र पर, हम लोग चार साधु थे, वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पहुँच करके वो हम लोगों की भी ऐसे वो उतारने लग गया वीडियो फिल्म। तो फिर हमने उनसे पूछा अंग्रेजी में कि और कौन से साधु की तुमने इसमें उतारी है, तो फिर वो बताता है कि देखो आई विल शो यू, बोलते हैं, और उसने ऐसे रखा कैमरा, और फिर उसमें वो भागलपुर या कौन सा स्थान है वहाँ बिहार में या चंपापुर के आसपास, तो वहाँ वो पिछली परिवर्तन समारोह की उसने वो रील चालू कर दी, और उसमें वो महाराज श्री प्रवचन कर रहे थे। तो फिर हम लोग सब एकदम सन्न रह गए, सुनते रह गए उसको, और उसने भी देखा कि ये सभी साधु देख रहे हैं, इसको देखने दो। तो उसमें वो महाराज जी बोलते हैं, कि लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत कम शब्दों में उन्होंने बोला, और फिर वो बात ऐसी है कि कोई भी बोल सकता है, लेकिन उनके मुख से जब वो बात निकली तो रोंगटे खड़े हो गए हम लोगों के सबके, क्योंकि वो बात किसी और के मुख से वैसी शोभा को प्राप्त हो ही नहीं सकती जो ऐसी कठोर तपस्या करने वाले के मुख से वो बात निकलती है। लगता है कि ये यहां से बोल रहे हैं, यहां से और यहां से नहीं बोल रहे क्या? देखो, दिमाग की बात मुंह से निकलती है और कानों तक जाती है, और अंदर की बात हृदय से निकलती है और हृदय को छूती है। ये फर्क है बातों में। इसीलिए दशवैकालिक उत्तराध्ययन ग्रंथ में श्वेतांबर आम्याय में बहुत सुंदर पंक्ति आती है एक, वो पंक्ति हमें इतनी अच्छी लगी, उसमें ये लिखा कि साधु का मौन विद्वान के भाषण से बढ़कर के होता है। क्योंकि उस मौन में अनुभव की गहराइयां हैं और साधना का आनंद रस है, और विद्वान के भाषण में केवल शब्द जाल है और इधर उधर से इकट्ठा किए हुए दृष्टांत है। वो गहराई का अनुभव, वो रस कहां मिल सकता है? अनुभव की बात सिर्फ अनुभवी के पास होती है, अनुभवी की बात पंडितों के पास होती है। तो उनके अंदर से जो बात निकली, उन्होंने क्या कहा, उसका जवाब बड़ा सुंदर दिया उन्होंने। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इस काल में इतनी तपस्या क्यों करते हो, मोक्ष ही तो जाना है, ऐसी भी क्या उतावली है? उनने क्या जवाब दिया कि हम नहीं जानते कि हमने भूतकाल में, पिछले जन्मों में कितने जीवों की हिंसा की है, कितने प्राणियों को पीड़ा पहुंचाई है। हम नहीं जानते कि हमने कितनी बार झूठ बोला है, हम नहीं जानते कि हमने कितनी चोरियां की है, हम नहीं जानते कि हमने कितना कुशील सेवन किया है, हम नहीं जानते कि हमने कितना परिग्रह का पाप अपनी आत्मा पर लादा है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमने जितने भी पाप किए हैं उन सब पापों का क्षय जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए हुए तप से होता है, इसलिए हम तपस्या करते हैं। क्या बात है, तब एकदम हड्डी पसली दिख रही है उनके पूरे। जब वो बोल रहे थे वो वीडियो फिल्म देखते समय, पहली बार सुना हमने, वो ऐसे हड्डी पसलियां दिख रही थी, लेकिन ये वाक्य जब उनने बोला तो लगा कि क्या आस्था है भगवान के वचनों के प्रति। तो वो जो रूस का व्यक्ति है उसके प्रश्न का उत्तर तो निकालना मुश्किल है कि निर्जरा हुई कि नहीं, इसका कैसे एहसास हो। वो तो भगवान की आस्था बता देती है कि अगर तुम तप कर रहे हो तो निर्जरा अवश्यमेव होगी। क्यों नहीं होगी निर्जरा? जरूर होगी, क्योंकि वो जिन्होंने निर्जरा कर ली है उन्होंने अपनी वाणी में ये बात कही। जिनेंद्र भगवान ने जो कुछ कहा है वो पहले प्रैक्टिकल कर चुके थे फिर उन्होंने बताया। तो नरकों में 5 प्रकार के दुख होते हैं, क्षेत्र से संबंधित तीव्र दुख, और आपस में एक दूसरों को लड़ा भिड़ा करके भी जो उनको दुख प्राप्त होता है वो भी वहां उनको भोगना पड़ता है, बड़ा तीव्र दुख है। और जब नरक में उसको स्मरण आता है पिछले जन्मों का, याणाणु ग्रंथ में उल्लेख है कि उसको ऐसा पश्चाताप होता है कि अरे मैं चूक गया। स्वर्णिम अवसर मेरे हाथ से निकल गया, क्या मौका मिला था मुझे। उस मनुष्य पर्याय से जीवों ने स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त किया और मैं उसी मनुष्य पर्याय से यहां नरक में गिरा हूं। मेरे जैसा अभागा और दुर्बुद्धि और कौन हो सकता है? थोड़ा संभल जाता तो बच जाता। गुरुजनों ने मुझे उपदेश दिया कि तेरे पाप का फल कोई बांटेगा नहीं, ध्यान रखना। पर मैंने उनका कड़वे शब्दों में तिरस्कार कर दिया कि तुम पाप पुण्य तुम्हारे पास रखो, मुझे उपदेश मत दो, मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे 50 काम करने हैं। ये सब पुण्य पाप की बातें, धर्म कर्म की बातें जो रहती है फुर्सत में, जो खाली हाथ बैठे रहते हैं ना, जिनको कोई काम धाम नहीं रहता, उनकी बातें होती है। मुझे क्यों सिखाते हो? तुम पुण्य करो और जाओ स्वर्ग और मोक्ष, मुझे नरक जाना है, मुझे जाने दो। लेकिन आज पता चला कि वो मेरे हितैषी थे, और जो व्यसनों में मेरा साथ देने वाले, जिनको मैं मित्र समझा करता था, जो मुझे पिलाते थे और खुद भी पीते थे, पहले उन्होंने मुझे फोकट में पिलाई और बाद में मैंने अपनी सारी संपत्ति उस मदिरा में फूंक डाली और अंत में वो मदिरा ही मुझे पी गई। ये क्रम रहा, पहले दूसरों ने पिलाई, फिर मैंने पैसों से पी, और उसके बाद मेरा पीना तो दूर रहा, वो मदिरा ही मुझे पी गई। ये दशा बनी। सभी व्यसनों की ये हालत है। शुरू में लुभावने लगते हैं, बीच में छोड़े नहीं जाते, और अंत में अपने को खा जाते हैं, नष्ट कर डालते हैं। मैंने मनुष्य पर्याय में वो काम किया जिसका स्मरण करके आज मुझे नरकों की ये जो प्रत्यक्ष वेदना है उससे भी अधिक पीड़ा हो रही है, पश्चाताप की वेदना उससे भी अधिक है। बहुत दुखी होते वहां, और फिर बार बार, कितनी बार जीव नरक गया होगा कल्पना करो। अनादिकाल से भटकते भटकते संसार में कितने जन्म धारण किए, और जितनी बार जाता है उतनी बार रोता है, पछताता है, अब कभी शराब नहीं पीऊंगा, अब कभी अभक्ष का सेवन नहीं करूंगा, अब कभी ये होटल के जो दुनिया भर के टेस्टी पदार्थ होते हैं जीवा इंद्रियों को दो क्षण सुख देने वाले, या एक क्षण समझ लो, 4 मिनट तो कोई चबाता नहीं, एक और सौंफ चबा ले अलग बात, लेकिन इस क्षणिक सुख के पीछे कितना दुख परिणाम स्वरूप जीव को भोगना पड़ता है। एक क्षण का सुख और करोड़ों क्षण का दुख, ये कोई बुद्धिमानी का सौदा नहीं है, ये तो मूर्खता है जीव की कि थोड़े से सुख के पीछे वो घोर पाप कमाकर नरकों में पड़ता है। नरकों में कितना दुख भुगता, वहां जाकर पछताता है, वो गुटखा खा खा कर, तंबाकू खा खा कर कैंसर होता है, यहीं सड़ जाता है मनुष्य पर्याय में, फिर दुर्ध्यान से नरक जाकर के वहां पछताता है। वहां बार बार क्या है कि वहां नियम व्रत नहीं होते नरकों में और देवों में, तो भी वो वहां बार बार अंदर से ये भावना करता है कि अब यदि यहां से छुटकारा मिला तो मैं बिल्कुल सही रास्ता पकड़ूंगा, गलत रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा, स्वप्न में भी नहीं जाऊंगा। पर न जाने क्यों नरक से निकलने के बाद यहां मनुष्य पर्याय प्राप्त करके सब भूल जाता है, वहां की मार, वहां की घोर वेदनाओं को भूलकर यहां की हवा उसको फिर बहका देती है और वापस व्यसनी बन जाता है, वापस दुर्ध्यान में लग जाता है, वापस पंच पापों में तल्लीन हो जाता है, सब भूल जाता है। कई बार तो नरकों में ये भावना की होगी अपन सब ने कि मैं मनुष्य पर्याय प्राप्त करके जरूर व्रती बनूंगा। और मुझे याद है जिनेंद्र भगवान के उपदेश में आया था कि 8 वर्ष की उम्र का बालक भी व्रती बन सकता है, जैसे ही मेरे 8 साल होंगे मैं तुरंत व्रती बन जाऊंगा। और पता चला कि 80 साल निकल गए। लेकिन व्रती बनना तो दूर, व्रतों की बात सुनने तक की फुर्सत नहीं मिल पाई। कैसे समय निकल गया पता नहीं चला। देखो बचपन से ऐसा कोई दिन है जिस दिन आपने चेहरा देखा ना हो दर्पण में, और चेहरा कैसा था याद है अभी? सब भूल गए। जब इसी जन्म का भूल गए तो उस जन्म का कहाँ याद रहने वाला है। बचपन में कैसा चेहरा था, और बदलते 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 बाल पक गए, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, लिवर पैचेस बन गए चेहरे में। कई बार जो धब्बे हो जाते हैं ना काले काले, उम्र ढलते ढलते लिवर पैचेस बोलते हैं उसको मेडिकल साइंस में, लिवर पैचेस बन गए। और कितना परिवर्तन आ गया, झुर्रियाँ आ गई। कॉलेजन जो सेल्स के बीच में रहता है एक पदार्थ, वो उम्र के साथ ढलते ढलते ढीला पड़ गया, तो फिर चमड़ियाँ लटक गई। पहले अंगूर जैसे थे अब किशमिश जैसे हो गए। लेकिन तो भी सद्बुद्धि नहीं आई, कैसे कल्याण होगा जीव का? कभी विचार आता है मन में कि ऐसी लापरवाही और ऐसी मस्ती में मनुष्य पर्याय कैसे सुधर सकती है? अभी भी अवसर है, इसको भी गंवाना हो तो गंवा सकते। सब कुछ आपके ही हाथ में है, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। आपको अवसर का लाभ उठाना है तो आप जिम्मेदारी ले लो, नहीं उठाना तो आपकी मर्जी। देखो जिनवाणी जबरदस्ती किसी को पकड़ के मोक्ष नहीं पहुंचाती, और गुरु महाराज भी किसी को मोक्ष नहीं पहुंचाते। आदिनाथ भगवान मारीच को नहीं सुधार पाए भाई। अब फिर सोचो आप, कौन किसका क्या कर सकता है? जो सुधरना नहीं चाहता उसको तीर्थंकर भी नहीं सुधार सकते। इसलिए एकाध बार कभी अपने जीवन में ये विचार कर लेना कि मुझे अपना सुधार करना है, दुनिया को समाज को देश को सुधारना तो एक अच्छी बात है, लेकिन खुद सुधरना सबसे प्रथम आवश्यक है। और सुधरने का मतलब क्या है? इन्हीं कषायों से, 4 कषायों से, 5 पापों से और 7 व्यसनों से अपने को बचा लो। और इन पापों का जो बाबा है कौन है? मोह। वर्धमान चरितम में एक श्लोक है, एकतः सकलम पापम मिथ्यात्वमेकतस्तयोः वदन्त्यत्रांतरं दक्षा मेरु सर्षपयोरिव। एक देखो तराजू है, उसके एक पलड़े पर सारे पाप रख दो और दूसरे पलड़े पर एक मिथ्यात्व मोह को रख दो। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि इन दोनों में इतना अंतर है कि एक तरफ तो सरसों का दाना है और दूसरी तरफ सुमेरु पर्वत, इतना फर्क है। यानी मिथ्यात्व का पाप जीव को पंच परिभ्रमण कराता है, वही सबसे बड़ा संसार अपने अंदर का वो मोह है। उस पर विजय प्राप्त करना हो तो ये मनुष्य पर्याय बहुत अच्छा मौका है। पर चाहो तो, ना चाहो तो ठीक है। अभी आपको और घूमना है, पेट्रोल आपके पास ज्यादा है तो घूम लो साहब, कौन रोक सकता है? छिज्जे तिल तिल मित्तम, ये गाथा पड़ी थी, भिंदिज्जे तिल तिलंतरन सैलम वज्जगीय कड्डिज्जे निहप्पे पूय कुंडम्मी। बहुत खतरनाक गाथा है वैसे, इसका विस्तार अपन अगली बार देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत खतरनाक गाथा है, कैसे वहां पर पीड़ाएं होती है नरकों में उसका चित्रण है। बाकी कल जो कषायों के स्थान, पुण्य पाप के स्थान बताए थे दोपहर में, वो श्रोताओं की जानकारी के लिए संक्षेप से अंत में बतला देते हैं और उसके बाद ये स्वाध्याय का सत्र पूर्ण किया जाएगा। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, कौन से दो प्रकार के? बोलो, पाप और पुण्य। लेकिन इन कर्मों की शक्तियां चार प्रकार की होती है। पाप की शक्ति भी चार प्रकार की होगी, पुण्य भी चार प्रकार का होगा। तो पाप में कड़वाहट होती है और पुण्य को लोग मीठा समझते हैं। ये सबको स्वीकार है ना? तो इसमें क्या है कि दृष्टांत के रूप में चार चार स्थान दिए हैं, पाप के चार स्थान। सबसे कमजोर श्रेणी का जो पाप होता है उसकी कड़वाहट को नीम के साथ में जोड़ करके बतलाया, निम्ब स्थानीय पाप। एक किसी को लिखने की इच्छा हो तो लिख भी सकते हैं, निम्ब। दूसरा कांजीर। यहां करंज के पेड़ है बहुत सारे, आर के लिए जाते समय रास्ते में मिलते हैं, तो करंज नीम से ज्यादा कड़वा होता है, ठीक है ना? आप लोग क्या बोलते हैं, करंज बोलते हैं और कुछ बोलते हैं? कणजी बोलते हैं, ठीक। बस तो समझ में आना चाहिए आपको, बस इतना ही है। लिख लेना, आप गुजराती में लिखना हो गुजराती में लिखना, जिसको अंग्रेजी आती हो अंग्रेजी में भी लिख सकता है। याद रखना बस, पाप के चार भेद हैं, एक निम्ब स्थानीय, दूसरा कांजीर स्थानीय, संस्कृत में कांजीर बोलते हैं, तीसरा है विष स्थानीय। विष यानी जहर, कड़वा जहर। चौथा हलाहल, जिसको कालकूट विष बोलते हैं, सबसे जहरीला सांप। उसकी सांस अगर किसी को लग जाए मूर्छा आ जाती है। उस सांप के पास अगर कालकूट विष रख दो तो वो जलकर राख हो जाता है, इतना भयानक विष। कालकूट, साइनाइड कह लो, कुछ भी कह लो आप, आज की भाषा में कोई बता नहीं सका उसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट लिया लेकिन बताने के पहले प्राणांत हो गया। किंग कोबरा जब किसी को काटता है तो 5 मिनट लगते हैं मरने में, लेकिन साइनाइड अगर किसी ने ले लिया तो सेकंड्स में काम हो जाता है। लेकिन कोई इसका मतलब दुरुपयोग मत करना इस जानकारी का है, क्योंकि ये याद रखना कि मरने से पापों का अंत नहीं होता, शरीर छूटता है, नया शरीर मिल जाता है और एक नया पाप भी साथ में चला जाता है। तो अभी जितना दुख हो रहा था उससे भी अधिक दुख आगे गारंटीड है, बिल्कुल आप याद रखना, सुनिश्चित है। तो ये चार स्थान पाप के हो गए, निम्ब कांजीर विष हलाहल। पुण्य के चार स्थान, गुड़, गुड़ मीठा होता है ना, गोल जिसको बोलते हैं आप। फिर दूसरा स्थान जो है वो खड़ी शक्कर, वो गुड़ से ज्यादा मीठी होती है। और तीसरा जो स्थान है शर्करा का, रिफाइंड सुगर, वो उससे ज्यादा मीठी होती है। और चौथा स्थान जो है वो अमृत। इस प्रकार पुण्य और पाप के ये चार चार स्थान होते हैं, और चार कषायों के भी चार चार स्थान होते हैं। तो क्रोध के चार स्थान, एक जल की रेखा, दूसरी रेखा रेत की रेखा बालू की, तीसरी धरती की रेखा पृथ्वी रेखा, और चौथी नग की रेखा। अंगूठी के अंदर जो रत्न होता है ना, उस पर अगर कोई लकीर खिंच जाए तो वो मिटती नहीं कभी, नग रेखा। पत्थर की लकीर भी बोल सकते हैं उसको, तो पत्थर ही तो है रत्न, लेकिन पत्थर बोलना नहीं चाहता कोई, क्योंकि रत्न अपना बहुत कीमती चीज होती है, इसलिए उसको नग कह दिया आचार्यों ने कि भाई तुम बुरा मत मान जाओ, है तो पत्थर ही वो। फिर मान कषाय के चार स्थान है, एक लता स्थानीय, लता यानी बेल, हवा चलती है तो फिर बेल ऐसे लहरा जाती, झुक जाती। उसी प्रकार जिसको बिना उपदेश के भी मान का उदय तो आया लेकिन मान शांत हो जाता, नम्र हो जाता, झुक जाता है, लता स्थानीय। दूसरा दारु स्थानीय, लकड़ी जैसा, लकड़ी जैसा मान। तो लकड़ी को कुछ उपाय करो तो फिर मुड़ जाती है, जैसे ये हमने कल उदाहरण दिया था, ये अपनी पिच्छी की जो डंडी है, ये बेंत की लकड़ी है, इसके जंगल वहाँ बंगाल में नंदन वन में है। तो ये जो बेंत की लकड़ी होती है ये सीधी होती है, लेकिन इसको थोड़ी देर गर्म पानी में भिगा दो तो नरम पड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। तो उसी प्रकार मान, दूसरी श्रेणी का जो मान होता है उसको थोड़ा समझा दो कि भाई छोड़ो भाई, क्या करते हो तुम, क्यों, क्या रखा है इसमें नाम में और फिर मान में, चलो हटाओ, तो शांत हो जाता है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं। और तीसरा जो मान होता है अस्थिस्थानी, हड्डी। अब हड्डी को 3 दिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखो तो फिर वो नरम पड़ती है। और हमने कल एक उदाहरण दिया था ब्लैक बेल्ट जोन्स जिम केली का, तो जिम केली एक ऐसा कराटे चैंपियन था कि उसका शरीर उसने ऐसा कड़क कर दिया था कि उसके जो चेले थे वो जब लकड़ियों का प्रहार करते थे लकड़ियां टूट जाती थी, उसको कुछ नहीं होता था, इतना उसमें स्ट्रांग शरीर था उसका, कड़क था। तो अस्थियां लकड़ियों से ज़्यादा मजबूत होती है, और कई बार लकड़ियों से हड्डी भी टूटती है, ये भी बात है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरफ है। अब उसमें क्या है कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो या और कोई खराबी हो, परफेक्शन ना हो, तब ऐसी स्थिति बनती है। और जो हड्डियों को अच्छी तरह वो साध ले तो बात अलग होती है। और अग्नि में जलाने के बाद भी हड्डियां बच जाती है, तो वो तीसरी श्रेणी का मान है। उसको 6 महीने तक समझाओ या फिर खूब बार बार समझाओ, तब जाकर के उसको समझ में आता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब हटाओ उस बात को, शांत होता है उसका मान। और फिर आखिरी जो है शैलघन, शैलघन यानी पत्थर का खंभा। अब पत्थर का खंभा टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। उसी प्रकार वो चौथा जो मान होता है वो झुक नहीं सकते कभी, वो टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। फिर माया कषाय के 4 स्थान है, वंशी जन्नुग सरिसी मेड विषाणी तहेव गोमुत्ति अवलेहणी समाणा माया विचौ विहा वुत्ता। कसाय पावड़ की गाथा हमें याद आ गई अभी सवेरे सवेरे, तो उसमें एक तो अवलेहनी, अवलेखनी का अर्थ होता है जीभ साफ करने वाला जो यंत्र आता है ना, उसमें एक जगह टेढ़ापन होता है, तो उतनी कम श्रेणी की अगर माया उदय में आती है तो थोड़ा सा उसमें टेढ़ापन होगा, ज्यादा टेढ़ी माया नहीं हो, एक स्थानीय माया, तो जीभ साफ करने वाला यंत्र। फिर दूसरी जो माया है वो गोमूत्रिका, खुरपे का जो उदाहरण था उसको आप संशोधित कर लीजिएगा, वो हमारी त्रुटि हम जिनवाणी माता से क्षमा चाहेंगे, और फिर प्रतिक्रमण प्रायश्चित पूर्वक आपको ये संशोधित बात बतला रहे हैं। गोमूत्रिका माया, गोमूत्रिका माया में क्या होता है कि जैसे बैलगाड़ी चलती है और फिर जो बैल है उसके शरीर से निकलने वाले लघुशंका जब रास्ते पर ऐसे गिरती है तो ये ऐसे ऐसे उसकी लकीरें पड़ जाती हैं, तो ऐसा जो टेढ़ापन रहता है वो दूसरे प्रकार की माया में होता है। तीसरे प्रकार की जो माया होती है उसमें मेड विषाणी, मेड विषाणी का मतलब होता है कि जो घेंटे का सिंग है, घेंटे का सिंगड़ा यानी मेंढे का सिंग, वो कितना ट्विस्टेड रहता है, कितना मुड़ा हुआ रहता है, तो उतना टेढ़ापन हो, संयम के साथ उतना टेढ़ापन नहीं हो सकता, असंयमी ही होता है जिसके अंदर, वो श्रेणी की माया होगी तीसरी श्रेणी की। और चौथी जो माया है वो बांस की जड़ है। बांस की जड़ मतलब बांस ऊपर से कितना सीधा रहता है और अंदर से एकदम टेढ़ा रहता है, उसी प्रकार ऊपर से जिसको कभी नहीं पहचाना जा सकता है कि इसके अंदर कितना छल है, लेकिन अंदर वो महाछली होता है। और वास्तव में संसार का यही स्वरूप है। बिल्ली के नाखून कभी आपने देखे हैं? कुत्ते के और भालू के रींछ के नाखून तो दिख जाते हैं, लेकिन बिल्लियों के और शेर के नाखून अंदर छुपे रहते हैं, सिर्फ जब वो वार करते हैं तब ऐसे नाखून निकल आते हैं। तो इसलिए जो चीज बाहर दिख रही है उसमें धोखा मत खा जाना, और जो नहीं दिख रही है ऐसा मत समझ लेना कि यहां पर कुछ नहीं है, कोई खतरा नहीं है। वो चौथी जो माया होती है वो वैसी होती है, ऊपर से बिल्कुल बांस के जैसी सीधी, लेकिन अंदर बांस की जड़ इतनी टेढ़ी होती है कि उसको तोड़ तोड़ करके भी आप सीधा करने जाओ ना तो आप सीधे हो जाओगे, मतलब आपको नींद लग जाएगी, आप सीधे एकदम लेट करके सो जाओगे, लेकिन वो बांस की जड़ सीधी नहीं होने वाली। ऐसी चतुस्थानी माया होती है। और लोभ के भी 4 स्थान बताए थे कि हल्दी का रंग, हल्दी का रंग अपने आप फीका पड़ता है, पहला लोभ हो गया। फिर द्विस्थानी लोभ में क्या है, कीचड़ का दाग। अब एक हल्दी का दाग, दूसरा कीचड़ का दाग जो होता है वो थोड़ा बहुत उसको साफ करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन साफ हो जाता है।